ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए अमृत वेले का समय बहुत वैल्यूबल समय है। अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, इसकी मान्यता सभी धर्मों में भी है। हिंदू धर्म में तो हमें पता ही है कि भक्त सुबह सुबह उठ करके अपना भक्ति पूजा पाठ करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी 4:30 तक उनकी अजान होती है और सिख धर्म में भी अमृत वेले को बहुत महत्व दिया गया है। एक्चुअली अमृत वेला शब्द जो है वो सिख शब्द ही है, और यूं हम कहेंगे तो सृष्टि चक्र का ये जो समय है, संगम युग का समय, ये समय ही अमृत वेला है। बाबा कहता है कि सतयुग से तो दिन शुरू हो जाता है और कलयुग जो है वो अज्ञान अंधकार की रात्रि है, रात्रि का समय है। और जब शिव बाबा अवतरित होते हैं तब ये सृष्टि के अमृत वेले का समय है, जब परिवर्तन होता है। तो अमृत वेला हम ब्राह्मणों के लिए वरदानी समय है। डायरेक्ट बाबा से सर्व वरदान हमें सहज मिलते हैं। शिव बाबा भोलानाथ है और वो कहते हैं ना भोलानाथ है इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अमृत वेले जो भी हम शुद्ध संकल्प करते हैं और अगर सच्चे दिल से करते हैं तो वो बाबा हमारी सहज पूरे करते हैं। सो कहते हैं मन इच्छित फल हमें प्राप्त होता है। तो वरदानों के भंडार खुले हुए होते हैं। बाबा स्वयं भाग्य विधाता, वरदाता, विधाता के रूप में होते हैं। तो सुबह के समय हमारा जो मिलन होता है वो डायरेक्ट विश्व रचयिता से, सर्व खजानों के मालिक से मिलन होता है। दुनिया में भी कहते हैं कि आपने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। कई बार ऐसा होता है ना, तो फिर ऐसा बोलते हैं किसका मुंह देख लिया, और हम किसका मुंह देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं। सबसे पहले हमारी गुड मॉर्निंग किससे होती है? बाबा से होती है। तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान है कि उठते ही हमारा डायरेक्ट भगवान से मिलन होता है। तो जो अपने दिन का प्रारंभ इतना श्रेष्ठ रीति से करते हैं, इतना श्रेष्ठ मिलन से करते हैं, तो उनका सारा दिन कैसा होगा। अमृत वेले हमें प्रकृति का भी सहयोग होता है। क्यों अमृत वेले का महत्व है? क्योंकि प्रकृति इस समय अपनी सत्व प्रधान अवस्था में होती है। वातावरण शांत होता है, सात्विक होता है और सभी मनुष्य आत्माएं सोई हुई होती हैं। तो उनका जो तमोगुण है, यानी उनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो सब दबे हुए होते हैं। हमारा स्वयं का मन भी शांत होता है उस समय, सात्विक स्थिति में होता है। तो हम सहज ही योग में एकाग्रता का अनुभव कर पाते हैं, या जो बाबा से हम अनुभव करना चाहें उस समय वो हमारे लिए सहज होता है। इसको कहते हैं लाइन क्लियर होती है उस समय। पुराने जमाने में एसटीडी फोन चलते थे तो लोग सुबह सुबह फोन लगाना पसंद करते थे, क्योंकि सारे दिन में लाइन एंगेज होती थी तो मुश्किल से फोन मिलता था, लेकिन सवेरे लाइन क्लियर होने से डायरेक्ट फोन मिल जाता था। तो ये वो समय है जब हमारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अटेंशन और सावधानियां रखना जरूरी है, तब हमारे अमृत वेले हम फील करेंगे कि बस हम उठे और बाबा की याद में मगन हो गए और बाबा से प्राप्तियों का जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत सहज है। अमृत वेले ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में होती है और ये हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो इस समय हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनते हैं और यदि हम अमृत वेले के समय आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड रूप में निकलते हैं। तो जो हार्मोन से संबंधित बीमारियां हैं उनसे हमारा बचाव होता है। हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ही हार्मोन्स के आधार पर चलता है, तो ये बैलेंस हम अमृत वेले अगर उठते हैं तो वो बना रहता है। अब अमृत वेला हम पावरफुल तो करना चाहते हैं, हम सभी उठते हैं अमृत वेले, हमें मालूम है कि हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण समय है, लेकिन जितना पावरफुल हम करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। उठते भले रोज हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे तो नियम से उठते हैं, तो जैसे नेमी नाथ होते हैं, उठ के बैठना है ये हमारा नियम है तो जरूर बैठ जाते हैं उठ के। तो अगर सिर्फ नियम से उठते हैं और बाकी जो विधि पूर्वक अमृत वेला करना है वो नहीं कर पा रहे तो वो नेमिनाथ बनने के भी मार्क्स तो हैं, नहीं उठे और उठे उसमें भी फर्क है। बाबा कहते हैं कि जो कायदा है वो कायदा अगर हमने निभाया, बाबा की श्रीमत का पालन किया तो कायदे में भी फायदा है। हाँ, भले परसेंटेज में मिलेगा, पूरा फायदा 100% नहीं मिलेगा। कई बार बाबा कहते हैं कि जो सुबह का दृश्य होता है, बाबा जब वतन से देखते हैं जिस तरह से हम सब योग लगा रहे होते हैं वो बड़ा वंडरफुल होता है। बाबा को देखना तो कोई मुश्किल नहीं है, बाबा तो एक सेकंड में सब देख लेते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि वतन में बाबा के पास ऐसी टीवी है जैसी टीवी अभी तक यहाँ साकार में है ही नहीं। तो क्यों नहीं हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है, उसमें एक तो हम सारी दिनचर्या अपनी कैसे व्यतीत करते हैं और रात को हम किस विधि से सो रहे हैं। तो ज्यादातर जब हम सोते हैं रात को, जब हम बेड पर आते हैं तो कई बार हम थके हुए होते हैं, सीधे ही सो जाते हैं, तो बाबा को याद किया ही नहीं। हमारी विधि क्या है, सोने से पहले बाबा को हमें चार्ट देना है और जो भी कुछ श्रीमत के मतलब विरुद्ध हुआ सारे दिन में हमसे तो वो बाबा को सच्चाई से सुनाना है। बहुत बार बाबा मुरलियों में ही कहते हैं कि अगर हमने सच्चाई से अपना चार्ट दे दिया तो हमारा वो खत्म हो जाता है, आधा वही खत्म हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। और दूसरा, अगर हम बाबा की याद में सोते हैं, बाबा के साथ सोते हैं, तो सुबह उठते हुए ही तुरंत हमें बाबा की याद आएगी। नहीं तो कई बार कई चिंताओं में सोते हैं, सारे दिन भर में कई बातें आती हैं, उसमें कई समस्याएं होती हैं जिसका हमें टेंशन होता है। अब सारे दिन तो हम काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं, तो उस समय तो इतना चिंतन नहीं चला, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर पहुंचे वो बातें याद आने लग गई। हाँ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो चिंताओं में मन चला गया और फिर नींद आई, या तो नींद ही नहीं आती, नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। और अगर आ भी जाती है तो कैसे सोए, कैसी स्थिति में था मन, चिंता की स्थिति में था। तो सुबह उठेंगे तो उठते ही पहले वही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा जो रात को हमने जैसे जिस उसमें हम सोए। कई बार हम आपस में बातें करते हुए सोते हैं क्योंकि रात को ही मिलते हैं, सारा दिन तो सब अपने अपने कामों में होते हैं, अब रात को मिले एक कमरे में तो समाचार की लेन देन करते हैं आपस में, और वो समाचार की लेन देन करते हुए वो व्यर्थ की बातें गई मन के अंदर और फिर सो गए। या फिर आजकल सोशल मीडिया बहुत है, अब टाइम नहीं मिला, रात को ही मोबाइल हाथ में लिया और मैसेजेस देखना शुरू कर दिया, पता ही नहीं कितना टाइम निकल गया उसमें। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, फिर वो शायरी टाइम पर नहीं सोएंगे तो अमृत वेला कैसे उठेंगे, फिर देर से सो रहे हैं तो उठेंगे कैसे। तो ये सब बातें प्रभाव डालती हैं हमारा अमृत वेला कैसा होगा। तो ये सब ये माया हमें किन्हीं चक्करों में उलझाए रखती है, क्योंकि माया को भी पता है कि ये हमारी कमाई का समय है और वो कोशिश करती है कि हम ये कमाई ना कर पाए। तो किसी ना किसी रूप में हम अलबेले हो जाते हैं, एक तो सोने के समय और सुबह उठने के समय भी। सुबह उठे कई बार ऐसा होता है कि हम थके हुए होते हैं रात को, तो हम सोचते हैं थके हुए थे ना रात को, आज सो जाते हैं। या फिर सोचेंगे रात को ना सिर दर्द हो रहा था, बहुत बदन में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार जैसा लग रहा था, आज सो जाते हैं। या फिर क्या होगा, इसी तरह का कोई बहाना जो है वो हमारा मन देता है और हम एक दिन अमृत वेला हमने मिस कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन अमृत वेला मिस किया तो वो माया फिर चांस लेती रहती है। हर बार हर दिन कोई बहाना हमारे पास होता है कि हम अमृत वेला ना उठें। और अगर हम उठ गए, उठ जाते हैं, चलो दृढ़ संकल्प करके उठ गए, तो सोचते हैं 5 मिनट में बैठेंगे, नींद आंख तो खुल गई, बैठे नहीं अभी, लेकिन 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट आंख बंद की और क्या हुआ, 5 बजे आंख खुली। वो 5 मिनट 5 बजे होते हैं। या फिर उठ के बैठते हैं तो बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं, चलो यही कर लेते हैं अमृत वेला। अब बिस्तर पर बैठेंगे तो 5 मिनट तो योग लगेगा, 5 मिनट के बाद कहां पहुंच जाएंगे, बैठे बैठे ही बिस्तर पे बैठे हैं और निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं। फिर योग का टाइम पूरा होता है और बहुत शांति मिली। कौन सी शांति मिली, शांति नाम की शांति या नींद की शांति? तो हम कई बार वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सी शांति का अनुभव कर रहे थे। आप सब हंस रहे हैं तो मुझे भी वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं। फिर चलो हम कहेंगे कि बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए हमको, बिल्कुल तुरंत उठ करके हमें बिस्तर से नीचे आ जाना चाहिए। बिस्तर से नीचे पहुंचे हैं तो फिर वहां पर अगर हमने कोई अपना स्थान बनाया है, अपना घर में अगर बाबा का कमरा है तब तो बेस्ट है, अगर नहीं है बाबा का कमरा तो फिर हम अपने ड्राइंग रूम में या ऐसे स्थान पर, मतलब बेडरूम में नहीं बैठना है, कहने का भाव है कि हम ऐसे स्थान पर बैठे आकर के जहाँ नींद का प्रभाव नहीं हो, नींद के वाइब्रेशंस ना हो। और अगर हमें पता है कि हमें सुस्ती आ जाती है तो फिर हम फ्रेश होकर के बैठे, हाथ मुंह धोए, अपना ब्रश करें, अगर हमें कुछ पीने की जरूरत है मानो नींबू पानी पिए या ग्रीन टी पिए। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि चाय बनाकर पियो आप, क्योंकि चाय सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे तो नुकसान भी करती है वो, तो इसीलिए कुछ ऐसा ड्रिंक जो आपको कुछ एनर्जी दे सकता है वो अगर आपको लेने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं और फ्रेश होकर के हम बैठे। अब जब हम बैठे हैं होता ये है कि कई बार 10 मिनट हम फ्रेश बैठते हैं और अगर हमारा चिंतन विधि पूर्वक नहीं चल रहा है तो वो 10 मिनट में हम क्या क्या कैसे योग लगाते हैं, मैं बाबा के साथ परम धाम में हूँ, बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जब हम इस तरह से सोचते हैं, अपने वो अशरीरी स्थिति में स्थित होने की कोशिश हम करते हैं, तो फिर वो शांति की स्थिति में फिर मन चला जाता है। और जैसे ही शांति की स्थिति में मन जाएगा, क्योंकि नींद का असर थोड़ा तो होता ही है, वो और नींद आनी शुरू हो जाती है। तो फिर बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे हठयोगियों का म्यूजियम होता है ना, एक म्यूजियम बना हुआ है जयपुर में, उसमें अलग अलग पोजेस होते हैं, आसन के अलग अलग पोजेस होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे पोज होने लग जाते हैं, किसी की गर्दन लटक जाती है, किसी की कमर नीचे हो जाती है, किसी की ट्यून, बाबा कहते हैं ट्यून भी सुनाई देती है बर्तन में। अब कौन सी ट्यून सुनाई देती है हम समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चले जाते हैं। तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए योग के समय? इस तरह का चिंतन हो जो हमारे मन को खुशी में ले आए, जो हमारे मन को नशे की स्थिति का अनुभव कराए, तो फिर हमारी नींद उड़ जाएगी। कई भाई बहने ये सवाल पूछते हैं हमसे अमृत वेले के बारे में, कि हमारा अमृत वेला हम जिस तरह से अनुभव करना चाहते हैं या जितना पावरफुल हम करना चाहते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, तो कैसे अमृत वेला हम करें? तो सबसे पहला संकल्प हमारा होना चाहिए कि मैं परम धाम से इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। जो अशरीरी स्थिति का अनुभव बाबा कहता है, सचमुच वो अशरीरी स्थिति का अनुभव हम अमृत वेले बहुत सहज कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी रात सोए होते हैं। तो सोने का अर्थ ही क्या है? आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है उतने समय के लिए, वो अशरीरी ही होती है, तो वो अनुभव हमें मदद करता है। लेकिन वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हुए हम बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में, यानी आत्मा की जो अनादि स्वरूप की स्थिति है, उस स्थिति को अनुभव करें। मैं आत्मा जब परम धाम में हूँ, परम धाम में मैं संपूर्ण रूप में हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ, बाबा के समान मेरे गुण हैं, अगर बाबा शांति के सागर हैं तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बाबा प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप है, बाबा सर्वशक्तिमान हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये अपने अनादि स्वरूप का अनुभव वो अमृत वेले हम करें, और अपनी पवित्र स्थिति का भी, जो मेरी संपूर्ण पवित्र स्थिति है, क्योंकि वहां आत्मा एक बेराग हीरे की तरह, परम धाम में हम संपूर्ण पावन होते हैं, सारे पाप कर्म आत्मा यहाँ ही खत्म करके परम धाम में जाती है। बाबा कहते ना कि हम तो योग बल से खत्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी आत्माएं भी जो हैं दुनिया की, उन्हें भी सजा खाकर के भी पावन बना करके बाबा ले जाते हैं। बिना पावन बने कोई भी आत्मा परम धाम में नहीं जा सकती। तो वो मेरी जो स्थिति है, वो मेरी संपूर्ण स्थिति है, उस पवित्रता का मैं अनुभव करूं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा बाबा के साथ परम धाम में हूँ। वो हमको इतनी पावर देता है जब हम ये अनुभव करते हैं बाबा के साथ। फिर उसके बाद हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें। बाबा हमारा पिता है, परम पिता है, और पिता के रूप में वो पालना हमें अनुभव होती है। अमृत वेले के समय हम बालक सो मालिक हैं, बालक के रूप में हम प्राप्त करते हैं और मालिक के रूप में हम विश्व की आत्माओं को देते भी हैं, यानी हम वरदान लेते भी हैं बाबा से, और वरदान हम देने की भी स्थिति में हैं उस समय, और विश्व की आत्माएं भी उस समय सहज रिसीव कर सकती हैं। तो बाबा से सर्व संबंधों का प्यार अगर हमने अमृत वेले अनुभव किया, और विशेष जो संबंध हम अनुभव करना चाहते हैं, खासकर कोई विशेष संबंध हमें बहुत प्यारा होता है, तो वो संबंध अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, और संबंधों में ही हम बाबा के लव में लीन हो सकते हैं, जैसे भक्ति में आत्माएं कहती हैं कि भगवान के प्यार में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो बाबा कहते हैं वो लीन नहीं होती, वो उन्होंने गलत शब्द को गलत कर दिया है, वो वास्तव में लीन नहीं होती है, लेकिन परमात्मा के प्यार में आत्मा लवलीन हो जाती है। तो उनके प्यार में समाने का अनुभव, जैसे ही बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करते हैं तो बाबा के समान ही हम अनुभव करते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बाबा के समान बने, ये एक संकल्प होता है, एक होता है समान स्थिति का अनुभव करना और एक होता है कि मैं समान बनूं, और तीसरा बाबा कहते हैं कि कई संबंधों से फरियाद करते हैं बाबा को, वो प्यार का अनुभव करना वो स्थिति नहीं, लेकिन कोई ना कोई मांगने का स्वरूप होता है बाबा से, या शिकायत करने का स्वरूप होता है, किसी से हम परेशान हैं या कोई से हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, कोई विघ्न रूप है हमारे जीवन में, तो हम बाबा को वो सुनाने लगते हैं, उनकी शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्वरूप है दिल शिकस्त वाला, इसको बाबा कहता है ना, तो ये हमें वो बाबा के प्यार का अनुभव नहीं कराता है, वो हम भक्त बन गए उस समय, जैसे भक्त भगवान से मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ फरियाद करते रहते हैं, हमारा भी स्वरूप फिर वही हो गया। तो बाबा से ये अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव किया एक बार, तो सारा दिन किसी भी मनुष्य आत्मा की तरफ हमारी बुद्धि का आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही भरपूर हैं, परमात्मा प्यार से हमारा मन भरपूर है। जैसे कोई चीज हमारे पास भरपूर होती है तो हम संतुष्ट होते हैं, फिर हमारी बुद्धि नहीं जाती है, हमें पता है कि हमें तो ये प्राप्त है, हमें इसका क्या करना है। मानो आपने भोजन किया और भरपेट भोजन किया और फिर उसके बाद कोई आपको कहता है कि अब ये आप खा लो, तो हम क्या कहेंगे, नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है, अभी भूख नहीं है, तो जब भूख होगी तभी हम खाएंगे। ऐसे ही उस प्यार से अगर हमारा मन भरपूर है, बाबा के प्यार का वो अनुभव, बाबा का प्यार तो सर्वश्रेष्ठ प्यार है, वो निस्वार्थ प्यार है, ऐसा प्यार तो हमें दुनिया की आत्माएं दे ही नहीं सकती है ना, तो अगर वो भरपूर है तो फिर पूरा दिन किसी भी मनुष्य आत्मा के प्यार की इच्छा नहीं रखेंगे हम कि ये मुझे पूछे, ये मुझे प्यार करे, ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, लेकिन हम देंगे, हम दाता बनकर के प्यार दे पाते हैं, कोई कैसा भी करे लेकिन मेरा मन, मेरे मन में इतना प्यार है कि हम दे रहे हैं उनको ना, तो वो हम शिकायत करेंगे, फिर शिकायत रहेगी नहीं, या वो फरियाद हमारी बाबा से रहेगी ही नहीं। फिर अमृत वेले हम बाबा के सामने अपने जो पांच स्वरूप हैं, वो पांचों स्वरूपों का अनुभव करें। एक बार हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है तो पूरा दिन हमें उसका सहयोग मिलता है, क्योंकि मन पावरफुल हो गया तो फिर सारे दिन में कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो हमें वो परिस्थिति परिस्थिति लगती नहीं है, वो आई और चली गई, कई बार हमें ये भी पता नहीं चलता। ऐसे कहेंगे हम, मानो हमने एसी चलाया है, हमारा कमरा ठंडा है और बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अगर हम एसी वाले कमरे में बैठे हैं तो हमें गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको कंडीशन कर दिया, वो एयर कंडीशन हो गया कमरा। तो ऐसे ही मेरा मन अगर शक्तिशाली है, दिन की शुरुआत ही हमने अपनी इस तरह से की है, तो फिर सारा दिन बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, यानी बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मेरे मन पर उसका असर नहीं आएगा क्योंकि मेरा मन शांत है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरे मन की स्थिति सुख स्वरूप की है, प्रेम स्वरूप की है, तो हम वो रेडिएट करते हैं। तो हमारे जो पांच स्वरूप हैं, उसमें सबसे पहला हमने अशरीरी स्थिति मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव किया बाबा के साथ, फिर आत्मा नीचे सतयुगी सृष्टि में अपने देवताई स्वरूप का अनुभव करना है। मैं आत्मा, देखो अपने आप को देवता स्वरूप में, देखो कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी देवता, जहाँ प्रकृति भी संपूर्ण सुखदायी है। हम तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, पद्मा पदम पति बनते हैं बाबा हमें कहते हैं, तो वो सारे जो प्राप्तियां हमें होती हैं उन्हें स्मृति में लाना है कि भविष्य प्राप्तियां 21 जन्मों तक और कितनी बाबा कहते हैं ना कि 4 धन जो हमें मिलता है, इतनी बेहद की प्राप्तियां होती हैं कि हम तो क्या प्रजा भी, और प्रजा तो क्या भक्त भी जो हैं वो इन प्राप्तियों के आधार से चलते रहते हैं। और वो भाग्य सिर्फ आधा कल्प नहीं बाबा कहते, पूरा कल्प तक आप आत्माएं जो हैं वो सुखी रहती हैं, और फिर उसके बाद हमारे इस पूज्य स्वरूप की ही पूजा होती है भक्ति मार्ग में। तो कैसे बाबा हमारे द्वारा भक्त आत्माओं को साक्षात्कार कराते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आज कितनी विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा होती है, कितना सम्मान और श्रद्धा रखते हैं भक्त अपने इष्ट के प्रति, वो सोचो है ना। तो हमें वो जो खुशी और नशा जिसको बाबा कहता है वो अनुभव होगा, तो हमारी नींद तो कहाँ जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हम चिंतन नहीं चलाते, हम शांति में ही बैठ जाते हैं सिर्फ, तो फिर ये पोजेस होते हैं जो बाबा हमें बताते हैं हमारा चार्ट कि हम कैसे अमृत वेला कर रहे होते हैं। और फिर ब्राह्मण जीवन में हम हैं तो भी बाबा ने हमारा ये हीरे तुल्य जीवन बनाया है, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं इस समय, तो बाबा के साथ हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवा धारी हैं, विश्व सेवा पर उपस्थित आत्माएं हैं, बाबा के राइट हैंड बनकर हम भी स्वर्ग की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं, इस पूरे विश्व की आत्माओं के हम पूर्वज हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हैं क्योंकि कोटों में कोई जिन्हें भगवान ने चुना है और चुन करके इस दैवी परिवार में, इस ईश्वरीय परिवार में बाबा लेकर आया है। हम विश्व के आधार मूर्त हैं, उधार मूर्त आत्माएं हैं। तो ये महसूस करते हुए फिर हमें लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में मन को स्थित कर देना, क्योंकि इतना चिंतन करने के बाद हमारा मन उस स्थिति में आ जाता है कि बाबा से वो शक्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं, और अब मैं आत्मा विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे सकती हूँ। तो हम परम धाम में अपने आप को महसूस करें कि बाबा के साथ मैं विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ और विश्व की आत्माओं को शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट और सभी शक्तियों की सकाश मैं दे रही हूँ। तो ये हमने मनसा सेवा की, और उसके साथ साथ हम अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव भी करें। फरिश्ता स्वरूप में हम अंतःवाहक शरीर के द्वारा पूरे विश्व का चक्र लगा सकते हैं। बाबा इसको अंतःवाहक शरीर कहते हैं क्योंकि फरिश्ते उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, तो अपने लाइट के आकार का अनुभव करें। तो बाबा कई बार हमें कहते हैं कि एक स्थान पर बैठकर हम योग कर रहे हैं, उसकी बजाय क्या सोचे, सूक्ष्म रूप में तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना, तो हम मधुबन में आ जाएं, अपने घर में बैठने की बजाय हम मधुबन में बाबा के कमरे में आ जाएं और बाबा के सामने बैठ करके हम योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, जहाँ भी और भी आप अपने सेंटर पर भी जा सकते हैं, विश्व में अन्य स्थानों पर भी, अगर आप अन्य सेवा केंद्रों पर भी गए हैं तो उन स्थानों का भी हम चक्र लगा सकते हैं और विश्व की आत्माओं को मैं आत्मा शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दे रही हूँ कि ये आत्माएं भी अपने परम पिता को पहचाने और उनसे वर्षा लेने के अधिकारी बने, इन्हें भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से प्राप्त हो, ये आत्माएं भी सदा सुखी बन जाएं। तो इस तरह से हमें अपने उस स्वरूप के द्वारा ये विश्व सेवा करनी है। फिर बाबा से हम मस्तक पर विजय का तिलक लें, अमृत वेले, ऐसे तो बाबा हमें कहते हैं कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, विजयी रतन हैं, विघ्न विनाशक हैं, लेकिन फिर भी खुद महसूस करें कि बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं, स्वराज्य का तिलक दे रहे हैं, या बाबा से कंबाइंड स्वरूप रहने का तिलक, या तीन बिंदियों का तिलक भी बाबा हमें कहते हैं। कौन सी तीन बिंदी? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदी अगर हम समय पर लगा लेते हैं तो हमारी विजय ना हो ये हो ही नहीं सकता है। और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ इस स्थिति का तिलक, तो ये तिलक हम बाबा से प्राप्त करें अमृत वेले के समय पर। तो अगर आदि काल जो हमारा है, ये आदि काल का हमने अगर प्रतिदिन अभ्यास किया है, बाबा कहता है इसका संबंध आपका सृष्टि के काल से भी है। अगर हम अमृत वेला रोज करते हैं तो फिर हम सतयुग के प्रारंभ में आएंगे। अगर हम अमृत वेले से थोड़ा देर के बाद उठते हैं, जैसे 5 बजे का जो समय है वो भक्तों का समय माना जाता है, 2 से 5 का समय ये बच्चों का समय है, बाबा ने कहा विशेष मेरे बच्चों के लिए ये टाइम, जब हम इसमें जिस भी समय उठे, कोई 2 बजे उठकर अमृत वेला करते हैं, कोई 3 बजे उठकर करते हैं, कोई 4 बजे उठ करके करते हैं, लेकिन मेजोरिटी 4 बजे उठ करके करते हैं, 3:30-4 बजे उठ करके करते हैं, लेकिन 2 से 5 के बीच में हम जब भी करते हैं ये बच्चों के लिए टाइम है, लेकिन इसके बाद अगर हम उठते हैं तो ये भक्तों का टाइम शुरू हो जाता है। तो जो बच्चों वाली प्राप्ति है वो हम भक्तों के टाइम में नहीं कर सकते, बाबा उस समय फिर भक्तों के लिए बिजी हो जाते हैं। तो इसका असर हम सृष्टि में किस समय आएंगे उस पर पड़ता है। अगर हम मेजोरिटी अमृत वेला मिस करते हैं और देर से ही उठते हैं तो फिर हम सतयुग का समय, हमारा जो आने का समय है सतयुग के आदि काल में नहीं आएंगे, हम कुछ जन्म पीछे आएंगे, वो समय हमारा कट हो जाएगा। और अगर हमने विधि पूर्वक नहीं किया, जैसे कहा बाबा ने बताया कैसे हम अमृत वेला करते हैं, तो जो हमारे भक्त पूजा पाठ करेंगे हमारी मूर्ति की, है ना, वो भी विधि वही रहेगी कि अगर हम मजबूरी से उठते हैं, मानो हमें लगता है ब्राह्मण जीवन का नियम है अमृत वेले उठना है, प्यार से नहीं उठते, भगवान से हमारा प्यार है, प्यार उठाता है ना, कुछ लोगों को तो ये अनुभव होता है कि बाबा हमें सोने ही नहीं देता अमृत वेले, बाबा उठाता है, यहाँ तक कि हिला भी देता है, कौन ऐसा अनुभव करते हैं, जरूर कोई कोई अनुभव करते होंगे, लंबा हाथ उठाइए, देखिए कितने भाई बहने जो ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा हमें सोने, क्योंकि ये प्यार है और वो प्यार में बाबा ही हमें उठा लेता है, जिम्मेवारी बाबा समझते हैं अपनी और हम सो नहीं पाते, लेकिन प्यार नहीं है, मजबूरी से उठते हैं, फिर मजबूरी से ही बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ तो टाइम पास करते हैं। हाँ, कब गीत बजेगा, कब? चलो हम घर में बैठे हैं तब तो गीत नहीं बजेगा। हाँ, घर में बैठे हैं तो घड़ी देखते हैं, कब 4:45 बजेंगे, कब अमृत वेला पूरा होगा और जाकर सो जाएंगे। तो भक्त भी ऐसे ही पूजा करेंगे आपके मंदिर में, वो भी मजबूरी से। वो सभी टाइम के भोग लगाते हैं ना, जो भगत होते हैं, देवताओं को विधि पूर्वक उठाते हैं, उनको श्रृंगार कहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब करते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये सब बातें बाबा ने बताई थी। तो बाबा ने इसी तरह से बताया था कि जो भक्त भी है वो भी मजबूरी से आपका कर देंगे, जो उठाएंगे वो आपको ऐसे उठाएंगे और सोते सोते ही आपका वो समय का श्रृंगार कर देंगे, तो उसका अंतर पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ दादियां हमारी, और ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को भी हम उनके बारे में भी सुनते हैं कि बाबा हमेशा 2 बजे उठ करके योग अभ्यास करते थे। अभी भी 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि सारे दिन तो बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है, बाबा सेवा में रहते हैं, कई मामले होते हैं, लेकिन बाबा सुबह सुबह 2 बजे उठ करके प्यार से बाबा को याद करते हैं और बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार करते हैं। ये भी बाबा ने कहा, क्योंकि जो भी मुरली का मंथन होता था वो बाबा सवेरे अमृत वेले ही करते थे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कई बार हमें कई सेवाएं करनी होती हैं, तो उसके अगर हमें प्लान बनाने हैं, बाबा से कोई हमें टचिंग लेनी है, कोई हमारा ऐसा कार्य है, हमें उसका कोई डिसीजन लेना है, कई ऐसी बातें होती हैं हमारे जीवन की जो बाबा से हमें राय लेनी है। अब वो हमारी लाइन क्लियर किस समय होती है? अमृत वेले के समय। तो बाबा के सामने अगर हम वो रखते हैं उस समय, तो फिर बाबा से हमें जो टचिंग हो और वो हम करेंगे और उसमें सफलता ना हो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसमें बाबा का भी बल बढ़ जाता है, क्योंकि हमने बाबा के सामने रखा। हम बड़ी दादी जी के साथ रहे तो हम देखते थे कि दादी जी अमृत वेले योग करते थे और कई बार फिर मुरली क्लास में आकर के कहते थे कि आज बाबा ने अमृत वेले मुझे ऐसा कहा, और वो सेवा की बड़ी बड़ी प्लानिंग होती थी। दादी के समय में ही लाख लाख के प्रोग्राम हुए, आप सभी जानते हैं, लाखों की सभा इकट्ठी हुई, बड़े बड़े शहरों में वो कार्यक्रम हुए। फिर दादी ने वही वो क्लास में आकर के सुनाते थे, बाबा ने ऐसा कहा, और बाबा ने कहा माना, बाबा के सब बच्चे हैं तो वो करना ही है। और वो असंभव था उन दिनों में लाखों की सभा इकट्ठा करना, तो सपने में भी नहीं सोचते थे, लेकिन वो कितने सहज 1, 2, 5, 10 शहरों में नहीं, भारत के मैं समझती हूँ लगभग 25 से भी ज्यादा शहरों में इतने बड़े लाख की सभा इकट्ठी होकर के ऐसे से कार्यक्रम हुए। तो अमृत वेले बाबा से हम कुछ इस तरह के भी जो डिसीजंस हैं या प्लानिंग है सेवाओं की या कुछ भी, जो भी बाबा से हमें समझना है, क्लियर करना है, वो बाबा हमें क्लियर बताते हैं। मम्मा को हम देखते थे, मम्मा भी 2 बजे उठ जाती थी। तो एक बार की बात ना, उनकी मम्मा की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार कोई मिनिस्टर आए, यज्ञ में जैसे कभी कभी VIP आते हैं, तो मिनिस्टर आए, तो उनसे जो प्रोग्राम था, मिलना था, वो सब करते करते मम्मा को सोते सोते रात को 12 बज गए, और फिर 2 बजे मम्मा फिर उठकर योग में बैठ गई जैसे मम्मा का नियम था। तो जो बहन थी उनके साथ, उसने देखा मम्मा उठ के बैठ गई है, तो उसने मम्मा को बोला, मम्मा आप तो रात को 12 बजे सोए हो, आज सो जाओ आप, मैंने कोई जरूरी थोड़ी है रोज ही 2 बजे उठ करके योग करना है, थोड़ा देर से उठ के योग कर लेना। तो मम्मा ने कहा कि देखो, कोई VIP के लिए मैं अगर देर से सो सकती हूँ, अगर उसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं उसको इतना समय दे सकती हूँ, तो ये जो 2 बजे का मेरा समय, ये भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? कहने का मतलब कि किसी इंसान के साथ मैं मिस नहीं कर सकती तो भगवान के साथ मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। तो हम कितना महत्व देते हैं उसको, नहीं तो हम तो तुरंत सोच लेते हैं मैं रात को 12 बजे सोई थी, हाँ अभी 4 बजे कैसे उठेंगे, आज सो जाओ, जैसे होता है ना देरी से सोई रात को, कोई भी कारण से देरी हो गई। तो हालांकि हमें देरी से सोना नहीं है, हमें तो समय से सोना है, 10 बजे हमारा सोने का टाइम है हमारी दिनचर्या में, तो हमें 10 बजे सो जाना चाहिए। और ऐसे ही हमने रतन मोहिनी दादी जी को देखा एक बार दादी जी के साथ मुझे ट्रैवल करना हुआ और 3-4 दिन में दादी जी के साथ ही रही, दादी जी के रूम में साथ में रही। तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो सुबह 3 बजे उठे और 3 बजे उठते ही दादी जी ने नहा लिया, फिर दादी जी तैयार होकर के योग में आई, फिर बाद में योग के बाद योग से आने के बाद दादी जी ने मुरली पढ़ी और मुरली पढ़ने के बाद फिर दादी ने स्नान किया। तो मेरे को आश्चर्य, मैंने कहा दादी जी आपने स्नान तो कर लिया, दादी ने कहा नहीं वो तो मेरा छोटा स्नान होता है अमृत वेले के लिए। माना इतनी बड़ी उम्र हमारी दादी की और 3 बजे उठते ही वो पहले स्नान करके फिर अमृत वेला करते हैं, बिना स्नान किए वो अमृत वेला नहीं करते, माना ये विशेषता मैंने देखी उनके अंदर और कभी भी वो अमृत वेला मिस नहीं करेंगे अपना। तो अगर हम हमें लगता है कि हमें सुस्ती आ जाती है अमृत वेले के टाइम और हमारा इतना फ्रेश नहीं होता, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उठते ही एक बार थोड़ी सी एक अगर छोटा स्नान जिसको हम कहेंगे सीधा पानी डाला और फ्रेश होकर के बाहर आ गए, फिर बाद में आराम से नहा सकते हैं। तो ये विधि भी हम अपना सकते हैं जो हमारे बड़ी हैं, हमारी दादियां हैं, जो जो जिस तरह से वो अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाते रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये समय जो बाबा ने हमें विशेष दिया है, जो ब्राह्मण जीवन को पावरफुल बनाता है, और हम कहेंगे कि अगर ये समय हमारा श्रेष्ठ हुआ तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बाबा के वरदानों में ही पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से ही हम चल रहे हैं, बाबा के वरदानों से ही हम उड़ रहे हैं, जैसे कि हम सदा ही उसकी पालना में हैं, उसकी नजरों में हैं, उसकी छत्र छाया में हैं। अगर हमने अमृत वेला मिस कर दिया तो सारा दिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सहज हमारा योग नहीं लगता है, बहुत सहज हमारा पुरुषार्थ भी नहीं होता है। और एक जैसे बताया आपको कि रात्रि को सोने से पहले हमें भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए, सोने से पहले जो हम भोजन करते हैं, आजकल क्या होता है रात को ही पार्टियां वगैरह करते हैं लोग, अगर शादी ब्याह भी होते हैं तो उसका भी जो होता है सारा जो भी विधि करते हैं वो लोग, उनकी रात्रि के समय ही होती है तो रात को लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं ज्यादातर दुनिया में भी, कई बार ब्राह्मण भी, क्योंकि हम भी दुनिया में रहते हैं, दुनियादारी हमें निभानी होती है तो हम भी जाते हैं ऐसे स्थानों पर, वैसे हम बाहर से बाहर का खाते तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम रात को गरिष्ठ भोजन करते हैं, तला हुआ खाते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाते हैं, तो उसका भी असर हमारे दिमाग पर होता है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पचाने में ज्यादा चला जाता है और दिमाग की तरफ कम हो जाता है, तो वो सुस्ती का रूप ले लेता है फिर, और हमारे लिए अमृत वेला उठना मुश्किल होता है, अगर उठ भी गए तो फिर अलर्ट होकर के हम अमृत वेला कर पाए वो नहीं कर पाते हैं। तो रात को हल्का भोजन ही हमें करना चाहिए। अब हम जिस भी रूप में चाहे वो जैसे कहते हैं खिचड़ी खाएं रात को या सूप पीते हैं कुछ, या किसी भी रूप में जो हम समझते हैं हमारे लिए हल्का हल्का भोजन है वो हम हल्का भोजन ही करें और सुपाच्य भोजन करें, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन हमारा रात्रि का नहीं होना चाहिए। तो ये सब विधियां हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ये वरदानी समय जो बाबा से वरदान प्राप्त करने का है वो अवश्य सफल होगा और हम पूरा संगम योगी ऐसा महसूस करेंगे, जो कहा पूरा संगम योगी अमृत वेला है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मेरी हमारी शिफ्ट की ड्यूटी होती है, तो हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती है तो हम अमृत वेला नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम देर रात सोते हैं, तो सवेरे उठना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अगर ऐसी ड्यूटी है, अगर हमारी नौकरी ही ऐसी है मानो, तो फिर हम ऐसे कहेंगे जब जागे तब सवेरा। हाँ, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में अमृत वेला अलग अलग समय होता है। अगर हमारे यहाँ अमृत वेला सुबह 4 बजे है, तो अमेरिका में उस समय शाम का समय होगा, तो वो अपने समय पर अमृत वेला करते हैं, हमारे समय पर थोड़ी अमृत वेला करते हैं। तो यूं तो हम कहेंगे कि सारी दुनिया में 24 घंटे अमृत वेला चल रहा है, क्योंकि हर देश में घड़ी अलग अलग समय अमृत वेला दिखा रही है। तो हो गया ना पूरा संग्रह भी अमृत वेला। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारी ऐसी मजबूरी है तो हम जब उठ रहे हैं सो करके, तब हम अपना नियम बना लें कि हमें अपने दिन का प्रारंभ बाबा की याद से ही करना है। आधा पौना घंटा हम बाबा की याद में बैठे, वही हमारे लिए अमृत वेला। वो मजबूरी है तब, ऐसे फायदा नहीं उठाना है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आज तो हम देर से उठे अभी कर लो अमृत वेला। लेकिन मजबूरी में बाबा हमेशा हमें विधि बताते हैं, तो फिर उस तरह से हम उसे अगर उस विधि से करेंगे तो बाबा भी जानता है, बाबा तो हमारा हर पूरा चार्ट जानते हैं, तो फिर हमें उसका वो भी मिलेगा, जो जमा हमें मिलना चाहिए उसका वो हमें प्राप्ति होगी। ओम शांति।
प्रभु का मिला सहारा।